नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उत्पत्ति नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं ये मधुर संगीत रचना।
मित्र प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं और प्रभु के वचन की गहराई में बढ़ रहे हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने याकूब के द्वारा यूसुफ के पुत्रों को आशीर्वाद देने और भूमि देने के विषय में देखा था। आज हम उत्पत्ति उसके 49 अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। यह अध्ययन भी ध्यान देने योग्य अध्याय है, क्योंकि इसमें बूढ़े याकूब की मृत्युशया का दृश्य है। यद्यपि हमने पिछले अध्याय में भी उसे मृत्युशया में पड़े हुए देखा, जब उसने अपने आप को संभाला और खाट में बैठकर यूसुफ के दोनों पुत्रों को आशीर्वाद दिया। इस वार्तालाप और पूछताछ के बाद याकूब के अन्य पुत्र भी वहां आ गए और इस प्रकार से उसके चारों ओर उसके 12 पुत्र खड़े थे और प्रत्येक के लिए उसके पास एक विदाई का संदेश था। वह बड़े पुत्र से आरंभ करता है और सबसे छोटे पर अंत करता है। कोई भी व्यक्ति जो अपने मृत्युशया पर से कुछ कहता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि साधारणतः यदि उसने कभी सच नहीं कहा है तो वह अपने मृत्युशया पर सब सच बोलता है। मृत्युशया का यह संदेश प्रभावशाली है, क्योंकि यह भविष्य सूचक है। यह बताता है कि याकूब के 12 पुत्रों का क्या होगा जब वे जाति बन जाएंगे। तब उस समय वो एक भविष्य सूचक था, अब वह एक बड़ा इतिहास बन गया है। मित्रों, यह हम सब के लिए अंतिम मौका है कि हम याकूब के जीवन में विश्वास के और एक प्रमाण को देखें। उसने अपने उन पुत्रों से बातें की जो इसराइल के 12 गोत्र बनने जा रहे हैं और वे कनान देश में रहने जा रहे हैं। लेकिन विश्वास क्या है? मित्रों, याद रखें कि कनानी लोग अभी भी कनान में हैं और याकूब का पूरा परिवार एक पक्षीय होकर मिस्र देश में जा बसा है। हम आगे देखते हैं कि याकूब का मृत्यु शय्या पर से आशीर्वाद देना और भविष्यवाणी करना। तो आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 49 अध्याय और उसके 1 पद को पढ़ें, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब याकूब ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, इकट्ठे हो जाओ कि मैं तुमको बताऊं कि आने वाले दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। मित्रों, हम यहां पर एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति को पाते हैं। हम यहां पर पाएंगे कि कुछ निश्चित अभिव्यक्ति हैं जिसे बाइबल में बार बार उपयोग किया गया है। उनमें से एक अभिव्यक्ति यहां पर हमारे सामने है, आने वाले दिनों में। इसराइल राष्ट्र का आने वाले दिन कलीसिया के आने वाले दिन से भिन्न होगा। यहां पर एक बहुत ही बारीक भिन्नता वितरण में है जिसे बनाने की आवश्यकता है। अब वह इसराइल राष्ट्र के अंतिम दिनों के बारे में और उन 12 गोत्रों का जो उसके पुत्र के द्वारा बढ़कर एक राष्ट्र बनाएंगे, उनका क्या होगा, उसके विषय में बातें कर रहा है। बाइबल प्रशिक्षण केंद्र में मेरा एक मित्र था जो एक जवान और तेज विद्यार्थी था, जिसने इस विषय पर अच्छा अध्ययन किया, जिसने भविष्यवाणी के विषय में लेख लिखा, जिसमें उसने याकूब के 12 पुत्रों और उनके द्वारा आए गोत्रों के बारे में भी लिखा। मैं उससे बातचीत करते हुए खुश था क्योंकि वह हमेशा ही कोई नए विषय पर लिखता है और उसके पास कहने के लिए हमेशा कुछ नया ही होता है। जब एक अद्भुत भविष्यवाणी जो इन 12 जातियों या गोत्र के बारे में पूरी हो चुकी, तो मैं उसके पास उसे बधाई देने के लिए पहुंचा, विशेषकर वे भविष्यवाणियां जो मूसा के द्वारा व्यवस्था विवरण उसके 33 अध्याय में दी गई थी। मित्रों, बहुत से लोग इस बारे में बातचीत करते हैं कि कुछ निश्चित भविष्यवाणियां पूर्ण हो चुकी है, जैसे इसराइल देश, और वह सही है। परंतु हम इसराइल को 12 भागों में बांटकर इन्हें सकरा कर सकते हैं और इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर प्रत्येक गोत्र के लिए कुछ कहना चाहता है। न केवल राष्ट्र से संबंधित भविष्यवाणियां पूर्ण हुई, बल्कि प्रत्येक गोत्र से संबंधित भविष्यवाणियां पूर्ण हो गई है। मेरे मित्रों, यह वास्तव में इस अध्याय को स्मरणीय बना देता है। हमारे सामने जो अध्याय है, हम इसमें देखेंगे कि प्रत्येक गोत्र कौन सी भविष्यवाणियां और कौन सी भविष्यवाणी उसमें ठीक बैठती है, अर्थात अंतिम दिनों के बारे में। यद्यपि कुछ भविष्यवाणियां पहले ही पूर्ण हो चुकी है और अधिकतर भविष्यवाणियां अंतिम पूर्णता की प्रतीक्षा में है। मैं यहां पर सिर्फ विशेषता को ही बता रहा हूं, परंतु यदि आप और अधिक गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं तो मैं आपको 2 सहायक पुस्तक के बारे में बताना चाहता हूं। इस पुस्तक के नाम है पैराडाइज टू प्रिजन, डेविस के द्वारा उत्पत्ति का अध्ययन, और उत्पत्ति का लेख जो मोरिश के द्वारा लिखा गया है। हम यहां उत्पत्ति की पुस्तक उसके 49 अध्याय और उसके 2 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, हे याकूब के पुत्रों, इकट्ठे होकर सुनो और अपने पिता इसराइल की बातें ध्यान से सुनो। मित्रों, यहां पर अब याकूब बूढ़ा व्यक्ति है और खाट पर बैठा हुआ है। मैंने उसकी तस्वीर देखी है जो बिस्तर पर फैला हुआ है और ऐसे दिखता है जैसे वह अपने सिर को उठा नहीं पा रहा है, परंतु यह सच नहीं है। वह अपनी लाठी पर टेक लगाए हुए था, जैसे कि हम इब्रानियों 11 अध्याय उसके 21 पद में पाते हैं। स्पष्ट रूप से देखें तो हम पाते हैं कि बूढ़ा याकूब पूरे जीवन भर चलता ही रहा और वह चलते ही रहना चाहता है। वास्तव में मृत्यु उसके लिए एक बाधा है। वह बिल्कुल बहुत ही कष्टमय समय में आता है। यह वह समय है जब हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मैंने 2 वर्ष पूर्व एक नियुक्ति का समय पक्का किया और मैं नहीं जानता कि मैं उसे पूरा कर पाऊंगा या नहीं। मैं उन्हें एक प्रतिबंध शर्त के साथ स्वीकार करता हूं, और यदि मैं जीवित रहा तो। मित्रों, याकूब ने यह पाया कि वह आगे नहीं बढ़ सकता है, तो वह अपनी लाठी का सहारा ले रहा था। वह आगे बढ़ते रहना चाह रहा है, परंतु वह नहीं बढ़ सका। कई रीति से याकूब क्या ही स्मरणीय व्यक्ति रहा है। हम आगे रूबेन से संबंधित भविष्यवाणियों को पाते हैं। हम उत्पत्ति उसके 49 अध्याय उसके 3 और 4 पदों में इस प्रकार से पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, हे रूबेन, तू मेरा पहलौठा, मेरा बल और मेरा पौरुष का पहला फल है, प्रतिष्ठा और सामर्थ्य का उत्तम भाग तू ही है, तू जल के समान अनियंत्रित है, इसलिए श्रेष्ठ ना ठहरेगा, क्योंकि तूने अपने पिता के बिछौने पर चढ़कर उसे अशुद्ध कर दिया है, वह तो मेरी खाट पर चढ़ा। मित्रों, इन पूर्वजों ने एक बड़े विषय अर्थात खानदान को पहचान लिया है, और यही बात है कि आज भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पिता, जैसे पुत्र याकूब इनको पहचानता है और देखता है कि यह लड़का रूबेन अपने आप में एक महान वार्ता का विषय रहा है, वो पानी की तरह अस्थिर है। हो सकता है कि याकूब अपने पहले दिनों में इसे जान गया था, या उसके बड़े बेटे के साथ भी सच था, तू श्रेष्ठ नहीं होगा। रूबेन कभी भी श्रेष्ठ नहीं बन पाया, वह कभी भी इनाम के तौर पर नीले फीते को नहीं जीत पाया। वह कुछ लाल और सफेद फीतों को तो जीत पाया, परंतु वह कभी भी पहले स्थान में नहीं आ पाया। मित्रों, आज भी बहुत से लोग इसी प्रकार से हैं, वे संतुष्ट हैं और बढ़ना नहीं चाहते हैं। मेरा एक प्रचारक मित्र है जो बहुत ही अद्भुत व्यक्ति है, वह एक सक्षम लेखक बन सकता था, परंतु वह लेखक बनना नहीं चाहता था। मैं सोचता हूं कि उसने 2 छोटे पर्चे लिखे, जबकि वह एक बड़ा बाइबल का शिक्षक बन सकता था, परंतु वह नहीं बनना चाहता था। उसने बस वही किया जो वह करना चाहता था, वह उस लाल फीते के साथ ही संतुष्ट था और उसने कभी भी नीला फीता नहीं जीता। मित्रों, याकूब ने जो कहानी रूबेन के बारे में यहां पर बताई है वह बहुत ही घिनौनी कहानी है। मैं इस विषय पर ठहरे नहीं रहा जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में अध्ययन कर रहे थे, क्योंकि उस पर अधिक समय देने की मुझे कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। लेकिन समकालीन लेख, खेल, चलचित्र और टेलीविजन हमें इतना अधिक घिनौना या गंदी बातों से भरते हैं कि हमें बीमार कर देते हैं। परमेश्वर की यह इच्छा नहीं है कि हम मनुष्यों के पापों पर अधिक ध्यान दें। इसके बदले में वह हमें ये आदेश या निर्देश देते हैं कि हम उसकी ओर ध्यान दें। फिलिप्पियों के पत्री 4 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, अतः हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें न्याय संगत हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें मनोहर हैं, जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो जो उत्तम तथा प्रशासनीय गुण हैं, उन्हीं पर ध्यान दिया करो। मित्रों, परमेश्वर मनुष्य के पापों का लेखा रखते हैं ताकि हमारे सामने मानव जाति की सही तस्वीर रहे। अब हम शमौन लेवी के बारे में भविष्यवाणी को देखते हैं। इन दोनों लड़कों को एक साथ रखा गया है, वे दोनों ही लिया के पुत्र और सगे भाई थे। उत्पत्ति 49 अध्याय उसके 5 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, शमौन और लेवी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें हिंसा के हथियार हैं। मित्रों, आपको याद होगा कि वे कैसे शलेम में गए जो शकेम नगर में था, और वे उस नगर के सभी लोगों को नाश किए, क्योंकि एक व्यक्ति उनकी अपनी बहन का बलात्कारी था तथा अपराधी था। उन्होंने इसका बदला पूरे शहर से लिया। उन्हें वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए था, और याकूब उन्हें ये बातें याद दिलाता है जिसे हम उत्पत्ति 49 अध्याय उसके 6 और 7 पद में पढ़ते हैं, मेरा मन उनकी सलाह ना माने, मेरी महिमा उनकी सभा में ना मिले, क्योंकि उन्होंने अपने क्रोध में एक मनुष्य को घात किया और स्वेच्छाधारी होकर बैल की पूंछ काटी। धिक्कार है उनके क्रोध को, क्योंकि वह प्रचंड था, और उनके रोष, क्योंकि वह निर्दय था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इसराइल में तीतर बीतर कर दूंगा। मित्रों, हम लेवी में परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह को प्रदर्शित होते हुए देखते हैं। यह सच है कि वे इसराइल के चारों तरफ फैल गए थे, लेकिन यह इस कारण से था क्योंकि वे याजकीय गोत्र बनाए गए थे। यह सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह था कि परमेश्वर ने लेवी जैसे कठोर व्यक्ति को लेकर उसे याजकीय जाति का शीर्ष या प्रमुख बनाया। मेरे मित्रों, यह परमेश्वर का अनुग्रह जिसने हम पापियों को परिवर्तित करके हमें राजकीय राज्य में शामिल किया है। आज सभी विश्वासी याजक हैं, उनमें परिवर्तित शराबी, परिवर्तित वेश्याएं, परिवर्तित हत्यारे भी हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो कलीसिया में हैं, वे कैसे परमेश्वर के राज्य में याजक बन गए। मित्रों, जैसे हम सब नए बन जाते हैं, उसी तरह से ये भी बन गए, सिर्फ परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह के द्वारा। 1 पत्रस 1 अध्याय उसके 18 और 19 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो कि उस निकम्मे चाल चलन से जो तुम्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ, तुम्हारा छुटकारा सोने या चांदी जैसे नाशवान वस्तुओं से नहीं, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। मित्रों, तब हम पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 5 पद में आगे पढ़ते हैं, तुम भी जीवित पत्थरों के समान एक आत्मिक भवन बनते जाते हो, जिससे पुरोहितों का एक पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। मित्रों, वह किसके बारे में बातें कर रहे हैं? वे जो यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं, उनके बारे में बातें कर रहे हैं। हम देखते हैं कि रूबेन ने अपने पहलौठे का स्थान खो दिया और शमौन और लेवी ने भी अपने पहले के स्थान को खो दिए। राजा इनमें से किसी एक जाति से भी नहीं आएगा। एक और लड़का है जो पापी था। हम देखेंगे कि परमेश्वर के अनुग्रह ने उसके लिए क्या किया, जो हम यहूदा के बारे में पाते हैं। यहूदा के बारे में भविष्यवाणी, उत्पत्ति 49 अध्याय उसके 8 पद में इस प्रकार से लिखा है, हे यहूदा, तेरे भाई तेरी प्रशंसा करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। मित्रों, लिखा है तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह यहूदा के वंश से आया और इसके सामने सब लोग दंडवत करेंगे। हम उत्पत्ति 49 अध्याय उसके 9 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, यहूदा सिंह का बच्चा है, हे मेरे पुत्र, तू शिकार करके ऊपर चढ़ आया है। वह सिंह के समान दबकर बैठ गया है और शेरनी को छेड़ने का दुस्साहस कौन करेगा? यहां पर पवित्र शास्त्र में से एक ध्यान देने योग्य भविष्यवाणी है, जिसे हम उत्पत्ति उसके 49 अध्याय उसके 10 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, यहूदा से तब तक राजदंड न छूटेगा और न उसके पैरों के बीच से शासकीय राजदंड हटेगा, जब तक कि शीलो न आए और राज्य राज्य के लोग उसकी आज्ञा मानेंगे। मित्रों, जब तक कि शीलो न आ जाए, शीलो एक शासक है। पूरे पवित्र शास्त्र में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और स्मरणीय भविष्यवाणी है। हमें पहले ही बताया गया है कि स्त्री से पुत्र उत्पन्न होगा, वह प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही पहली भविष्यवाणी थी। हम उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 15 पद में इस प्रकार से पढ़ चुके हैं, और तेरे और इस स्त्री के बीच में तथा तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मित्रों, स्त्री का वंश ही है जो सर्प के सिर को कुचलेगा और वही है जो विजय को प्राप्त करेगा। यह भविष्यवाणी सबसे पहले उत्पत्ति में की गई थी और तब उस वंश को इब्राहिम, इसहाक और याकूब को भी स्पष्ट रूप से दिया गया, और अब यहां यहूदा को स्पष्ट किया गया है। यहूदा के वंश से अब आने वाला है। शब्द शीलो का अर्थ है शांति, आराम और प्रशांति। यीशु मसीह ही है जो शांति लाएगा। मित्रों, याद करें कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चला फिरा, तब उन्होंने उनका तिरस्कार किया। उनकी ओर मुड़कर उसने उनसे कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 पद लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मित्रों, वही शीलो है, शीलो आ गया है। यीशु मसीह न केवल शीलो है, परंतु वही है जो राजदंड को थामेगा। इस ब्रह्मांड का राजदंड कील से छिदे हुए हाथों में होगा। इस अध्याय के 24 पद के आखिरी हिस्से में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर से एक चरवाहा आएगा जो इसराइल का पत्थर या चट्टान होगा। इसलिए यह शीलो चरवाहा और पत्थर भी है। जब हम गिनती की पुस्तक उसके 24 अध्याय उसके 17 पद में जाएंगे, तो पाएंगे कि तारे के विषय में भविष्यवाणी की गई है। यीशु मसीह के आने का अर्थ क्या है, यह सब सोचिए। और यह वही वंश है जिसकी प्रतिज्ञा स्त्री और पूर्वजों से की गई थी। वह शीलो है जो शांति और आराम लाता है। वह राजा है जो राजदंड को थामता है। वह चरवाहा है जिसने अपनी जान दे दी। वह एक मुख्य चरवाहा है जो एक दिन आने वाला है। वह पत्थर है जिसे राजमिस्त्रियों ने अयोग्य समझा, परंतु वह कोने का प्रमुख शीरा बन गया। वह तारा है, अपनी कलिशिया का चमकता हुआ भोर का तारा है। यही वह वंश है जो आदम से शेत तक गया, हाबिल के मारे जाने के बाद से शेत से नूह तक गया, तब शेम और तब इब्राहिम, इसहाक और याकूब और तब यहूदा। मित्रों, इस अद्भुत वास्तविकता को मत खोइए कि परमेश्वर एक अद्भुत नियम और कार्यक्रम के अंतर्गत चल रहे हैं। हमारे लिए इसे देखना अति आवश्यक है। हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 49 अध्याय उसके 11 और 12 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, वह गधे के बच्चे को दाखलता से और अपनी गधी की बच्ची को उत्तम दाखलता से बांधेगा। वह अपने वस्त्र दाख मधु से और अपने चोगे अंगूरों के रस में धोएगा। उसकी आंखें दाख मधु से चमकीली और उसके दांत दूध से श्वेत होंगे। मित्रों, यह किसके बारे में बोला जा रहा है? यह यीशु मसीह के बारे में है, जिसने गधे के बच्चे पर सवारी कर यरूशलेम में प्रवेश किया। उसने अपने आप को मसीहा, राजा और मुक्तिदाता के रूप में अर्पण किया। उसने अपने वस्त्र को दाखरस के रसों में धोया, लेकिन किस प्रकार के दाखरस से? खून, अपने खून से धोया। परंतु जब मसीह दूसरी बार आएगा तो उसके वस्त्र लाल रंग के होंगे। तो एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया, जिसे हम यशाया नबी की पुस्तक उसके 63 अध्याय और उसके 2 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, तेरी वेशभूषा लाल क्यों है और तेरे वस्त्र उसके से क्यों है जो हौदे में दाख रौंदता हो? मित्रों, इस समय उसका अपना खून नहीं रहेगा, परंतु उसके शत्रुओं का खून होगा। यह यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताता है, जब वह न्याय करने के लिए फिर से आएगा। मित्रों, यहूदा को दी गई भविष्यवाणी पवित्र शास्त्र में एक महत्वपूर्ण और स्मरणीय भविष्यवाणी है। आगे हम देखते हैं कि भविष्यवाणी जबुलून के बारे में। हम उत्पत्ति उसके 49 अध्याय के 13 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, जबुलून समुद्र के तीर पर निवास करेगा, वह जहाजों के लिए बंदरगाह का काम देगा और उसका छोर सीदोन के निकट पहुंचेगा। मित्रों, जबुलून गोत्र था जो उत्तरी भाग की भूमि के किनारे पर रहा। तब इस्साकर के बारे में भविष्यवाणी हुई। हम उत्पत्ति 49 अध्याय उसके 14 और 15 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, इस्साकर एक बलवान गधा है जो भेड़शाला में लेटा रहता है। जब उसने देखा कि विश्राम स्थान अच्छा है और देश मनोहर है, तो उसने बोझ उठाने के लिए कंधे को झुकाया और बेगार करने वाले दास के समान बन गया। मित्रों, इस्साकर भी अंततः उत्तरी क्षेत्र की भूमि में बस गया। ये वे लोग थे जिन्होंने देश को बनाने के लिए कठिन परिश्रम किया और वे देश में आधार साबित हुए। वे कार्यकर्ता थे और यही विचार यहां पर आज हम शांत रहने वाले समूह के बारे में सुनते हैं। उसमें अधिकतर लोग मेरे और आपके जैसे लोग हैं। हम लोग टेलीविजन में नहीं आते हैं। असाधारण अधिकतर अनूठे लोग होते हैं जिन्हें हम टीवी पर देखते हैं, और इन्हीं लोगों को लोग महान मानते हैं। लोग हमें यह जताने की कोशिश करते हैं कि इसी प्रकार के लोग महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु मेरे प्रिय मित्रों, वे देश के स्तंभ या आधार नहीं होते, या किसी अन्य देश या जाति के लिए भी आधार नहीं होते हैं। एक छोटा गोत्र जैसे जबुलून और इस्साकर, जिसे हम अनदेखा करते हैं अर्थात ध्यान नहीं देते हैं, वे इसराइल देश की आधार या रीढ़ की हड्डी ठहरे जब वे प्रतिज्ञा के देश में बसे तब। अब आगे दान के लिए भविष्यवाणी को हम पाते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 49 अध्याय उसके 16 से 18 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, दान इसराइल के गोत्र में से एक गोत्र होकर अपने लोगों का न्याय करेगा। दान मार्ग में का एक सांप और रास्ते का एक नाग होगा जो घोड़े की एड़ी को डसता है, जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। हे यहोवा, मैं तुझ से उधार पाने की आस लगाए हूं। मित्रों, दान को परमेश्वर से उधार की आवश्यकता होगी, क्योंकि दान ही एक गोत्र है जो एक विद्रोह की अगुवाई करेगा। हम उसे भी देखेंगे जब हम अपने अध्ययन में आगे या उसके हिस्से में पहुंचेंगे तब। आगे गाद के विषय में भविष्यवाणी उत्पत्ति की पुस्तक 49 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेगा, पर वह उसी दल के पिछले भाग पर छापा मारेगा। मित्रों, यह एक दूसरा गोत्र है जो देश की उत्तरी क्षेत्र में जा बसा। वास्तव में दान है जो पूर्णतः उत्तरी भाग में था। जब इसराइल की बढ़ाई गई भूमि का पता चला तब और इस प्रकार से प्रकट किया गया कि दान से विशर्बा तक। तो अब हम आशेर और नप्ताली के विषय में भविष्यवाणी देखते हैं, जिसे हम उत्पत्ति 49 अध्याय उसके 20 और 21 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, आशेर का अन्न उत्तम होगा और वह राजा के लिए उत्तम भोजन उत्पन्न करेगा। नप्ताली छूटी हुई एक हरिणी है, वह मीठी मीठी बातें बोलता है। मित्रों, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मेरा एक मित्र जिसने इन सभी भविष्यवाणियों के पूरे होने के बारे में लिखा है, विशेषकर इन 12 गोत्रों अर्थात याकूब के 12 पुत्रों के विषय में की गई भविष्यवाणी के पूरी होने के बारे में। मैंने अभी तक कोई व्यक्तिगत अध्ययन इस विषय पर नहीं किया है, परंतु यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप इस प्रकार की खोज से बहुत लाभान्वित होंगे। बाइबल के सभी शेष या प्रत्येक व्यक्ति जिसके साथ यह व्यक्तिगत रीति से बातें करता है वो इसराइल के किसी एक गोत्र से भी आता है। यूसुफ के विषय में भविष्यवाणी को देखते हैं, उत्पत्ति उसका 49 अध्याय और उसके 22 पद में, जहां लिखा है, यूसुफ एक फलवंत डाली है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक डाली है, उसकी डालियां दीवाल पर फैल जाती हैं। मित्रों, यूसुफ कनान देश की भूमि को छोड़कर मिस्र देश को चला गया है, परंतु फिर भी वह वहां पर परमेश्वर के लिए एक गवाह ठहरा। बाद में उसके पुत्र एप्रेम और मनश्शे उस क्षेत्र में रखे जाएंगे जो बाद में इतिहास में सामरिया कहलाया। मसीह के दिनों में इसे अन्य जातियों का क्षेत्र या राज्य कहा गया है। यह गवाही का एक बड़ा स्थान है और सुसमाचार उस क्षेत्र में गया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं वहां पर सेवा की। योना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में हमें इसका विवरण मिलता है कि वह सामरियों के लिए गवाह ठहरा और यह सब कुछ कुएं में एक सामरी स्त्री के साथ बातचीत के द्वारा आरंभ हुआ। मित्रों, यहां पर अब हमारा समय समाप्त होता है, इसलिए हम अपने इस कार्यक्रम को यहां पर समाप्त करते हैं और हम अगले अध्ययन में पुनः मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। पर निशान